हेलो।
नमस्कार श्रोताओं, मैं मनोहर लाल कश्यप संवाददाता साझा मंच मोबाइल वाणी समाचार चैनल के माध्यम से आज फिर से आपके बीच उपस्थित होता हूं। दिल्ली एनसीआर बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे सामने मुकेश जी हैं जो ट्रेड यूनियन से हैं। तो मुकेश जी, साझा मंच मोबाइल वाणी में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे श्रोताओं को आज के दिन की घटना के विषय में बताएंगे आप क्या सारे दिन क्या हुआ आप लोगों के साथ में। पहले अपना परिचय देंगे आप।
श्रोताओं, मैं मुकेश कुमार, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU का जिला उपप्रधान झज्जर। और आज पूरे देश में किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे रेल रोको का आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चा का
जी,
जो लखीमपुरी खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के जो किसान मार दिए गए
जी,
उसके खिलाफ था। किसान मोर्चे की मांग थी कि जो एक तो उनको सजा दे मिले, गिरफ्तार तो हो चुके हैं वो, और एक दूसरी मांग ये थी, मुख्य मांग जिसको हम बोलते हैं कि जो मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री उनका इस्तीफा हो, वो मंत्रिमंडल से बाहर हो। इस मांग को लेकर ये आज का रेल रोको अभियान था पूरे देश में
जी,
6 घंटे का, सुबह 10 से लेके 4 बजे तक।
तो मुकेश जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इस बंद में आप लोगों ने क्या क्या किया आपने?
हम इस बंद में जो भी नजदीक की जो स्टेशन थे
जी,
उन स्टेशनों पे बैठे, फाटकों पे बैठे और रेल रोकी। पूरे देश में आज रेल नहीं चलने दी किसान मोर्चा ने।
ये पूरे देश में रहा या किसी किसी?
पूरे देश में रहा, कोई ऐसा राज्य नहीं जहां। असल में जब से ये आंदोलन चला हुआ है
किसान आंदोलन
तब से कोई भी आह्वान जो संयुक्त किसान मोर्चा करता है
जी,
कोई भी आह्वान करता है तो कोई देश का कोई कोना नहीं बसता जहां किसान इकट्ठे होके जिस उस पे उस आह्वान को लागू ना करते हो, चाहे भारत बंद का सवाल है या आज का प्रोग्राम है। ऐसे तमाम, अगर भारत बंद की बात करें
जी,
देश का एक भी शहर देश का ऐसा नहीं था जहां रोड जाम ना किए हों, भारत बंद करके रोडों पे ना बैठे हों लोग। कोई देश का शहर नहीं था और हरियाणा में तो कोई गांव ही नहीं बचा था जहां भारत बंद में लोग शामिल ना हुए हो।
लेकिन मुकेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बुरा मत मानिए, इसमें जिस प्रकार से किसानों की जरा भी बात को सुना नहीं जा रहा, बल्कि सरकार और दिन पे दिन हैवी होती जा रही है और किसानों पे हैवी होती जा रही है, किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, किसान किस्म किस्म से आंदोलन को रूप दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुनी नहीं रही। किसानों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, किसानों को बंद कर दिया जाता है और आए रोज ऐसा होने लगा है, और इससे देश की जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके विषय में बताइए।
अगर राजनीतिक रूप से प्रभाव की बात करें मनोहरलाल जी,
जी
आज अगर हरियाणा की बात कर लो, एलनाबाद में चुनाव, उपचुनाव
जी,
मतलब गोपाल कांडा बीजेपी का उम्मीदवार है राजनीतिक रूप से बात करें। हाँ, हरियाणा से बीजेपी का उम्मीदवार है एलनाबाद से
जी,
गोपाल कांडा
जी,
और उसको गांव में घुसने नहीं दे रहे लोग। ये तो प्रभाव है आंदोलन का, गांव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट मांगने के लिए घुसने नहीं दे रहे।
मुकेश जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम भी देख रहे हैं, सारा जहान जानता है कि जो बीजेपी में है, बीजेपी सरकार में, इसमें अधिकतर अपराधी किस्म के नेता नहीं है, जैसे लखीमपुर वाले हैं और ये कांडा साहब जो है, ये इनके आपराधिक गतिविधियां सारी, इतने केस है इन पे, क्या सरकार ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ले रही है?
बीजेपी का अगर चाल चरित्र चेहरे की बात देखे तो टोटली अपराधियों की पार्टी है, और जो भी अपराधी बड़ा अपराध करके आएगा वो पुलिस फोर्स से डरता या ईडी सीबीआई से डर के मारे बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेता है और बीजेपी उसको राष्ट्रभक्त घोषित कर देती है और साफ सुथरा एकदम से पेश करती है लोगों के सामने। यही बीजेपी गीतिका शर्मा हत्याकांड में गोपाल कांडा का इस्तीफा मांगती थी, यही बीजेपी आज उसको टिकट दे रही है। ये तो दोगला चरित्र है।
मुकेश जी, अब हम ये जानना चाहेंगे, इसमें देखो आज के टाइम में जो भी कुछ बात हो रही है बिल्कुल ओपन होके हो रही है। ओपन का मतलब ये है, खुल्लम खुल्ला ये है कि इसमें देखिए पूरे देश में जो शोर मचा हुआ है, विदेशों में शोर मचा हुआ है, हमारी न्यायपालिका क्या कर रही है, हमारे राष्ट्रपिता क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति जिनको बोला जाता है वो क्या कर, इनको क्या नजर नहीं आ रहा है?
ऐसा है मनोहर लाल जी, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो,
जी
चाहे वो संसद है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे चुनाव आयोग है, मतलब जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं,
जी
उनको बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है। और बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग वहां बैठ गए हैं।
जी
आज अगर बात करें पीएम से लेके और राष्ट्रपति तक आरएसएस है, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये कुछ बोल नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, चाहे न्याय सुप्रीम कोर्ट की बात है या और की चुनाव आयोग की बात है या किसी भी संवैधानिक संस्था की बात है, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। और ये आने वाले टाइम में नुकसानदायक होगा इस देश के लिए।
मुकेश जी, आगे क्या टाइम आएगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जो बोलता है उसको जेल में, जो बोलता है उसको मार दिया जाता है, जो बोल कोई मतलब आज के टाइम में आवाज ही नहीं उठा पा रहा। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, इस विषय में क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और विपक्ष क्या कर रहा है इसमें?
विपक्ष तो, असल में विपक्ष की अगर बात करें मनोहर लाल जी,
जी
विपक्ष तो आप मुख्य विपक्षी दल की बात करते हैं, कांग्रेस है देश
जी
में। और कांग्रेस की कुनीतियां जो रही हैं देश में, कांग्रेस
जी
की जो भी गलत हरकतें या गलत चाल रही हैं, उसी से तो उपजी है ना बीजेपी,
जी
नहीं तो जानता कौन था बीजेपी को। कांग्रेस अगर सही ढंग से काम करती तो शायद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती। और ये विपक्ष के तो वामपंथी पार्टियों को छोड़ के विपक्ष को क्लीन चिट तो नहीं दे सकती जनता।
लेकिन मुकेश जी, ये तो दस्तूर चलता आया कि सत्ताएं बदलती नहीं, हमेशा चाहे अच्छी से अच्छी सत्ता डूबती है और बुरी से बुरी सत्ता हासिल कर लेती है, तो ये तो खैर चलता रहता है। लेकिन जो विपक्ष का काम है, विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। कोई विपक्ष में तो कई पार्टियां, समाजवादी पार्टियां, ये है वो है, तमाम मायावादी की पार्टी, ये सब कर क्या रहे हैं?
असल में विपक्ष तो जो 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 आपने नाम गिना है, मायावती की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनको हम विपक्ष तो नहीं कह सकते।
नहीं, जो सत्ता
ये
में है वो
विपक्ष नहीं है,
विपक्ष विपक्ष
ये
का काम चलाती है वो।
मतलब ये जो जितने भी लोग हैं, मायावती है, मुलायम है, सब एक बार दो बार सरकार बीजेपी के साथ शामिल होके सरकार बना चुके हैं, इनको हम विपक्ष नहीं कहेंगे। यार ये लोग दूध के दूल्हे नहीं है।
जी
मायावती तो आज भी मतलब सबसे पहले कोई भी बात आती है तो
अच्छा मुकेश जी, अब हम जाते जाते एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी अवगत कराना चाहेंगे कि हद हमारे हिसाब से हद हो चुकी है। रोज पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, रोज महंगाई बढ़ रही है, मजदूरों के संग रोज अत्याचार हो रहा है। आपको पता है कि 16 तारीख से हरियाणा में भी ई श्रम पोर्टल लागू कर दिया, नया कानून ले आए हैं। आपको मालूम है, पहले राजस्थान में लागू किया है, अब हरियाणा में भी लागू कर दिया शनिवार से। इसके विषय में क्या कोई विपक्ष काम नहीं कर पा रहा? आप लोग भी CI2 क्या कर रहा है इसके विषय में?
CI2 की अगर मुझे बात करें मनोहर लाल जी, कोई भी अगर सरकार काला कानून लेके आती है
जी
या जैसे श्रम कानूनों में जो बदलाव किया है,
जी जी
उनको सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाने वाली ट्रेड यूनियन है मजदूरों के हित में, तो CITU लाल झंडे के यूनियन है। और CITU हमेशा मजदूरों के लिए लड़ती है, लड़ती भी रहेगी। ये तो नहीं कह सकते कि CITU अपने दम पे
जी
इन कानूनों को बदलवा लेगी, लेकिन CITU ने पहल कदमी करके तमाम जो ट्रेड यूनियन है उनको एक मंच पे लेके आई CITU, और उन पे हड़ताल भी करी है, आंदोलन भी करे हैं। और अब ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान होते, उसमें भी शामिल होते हैं ट्रेड यूनियन। तो अपने स्तर पे CITU और ट्रेड यूनियन लगी हुई है, लेकिन जब तक राजनीतिक बदलाव देश में नहीं होगा,
जी
नीतिगत बदलाव देश में नहीं है, अभी तक तो देश की जनता नेता बदल रही है ना।
जी
हम CITU ये कहती, नेता नहीं नीति बदलो।
जी
जब तक नीति नहीं बदली जाएंगी तो
जी
उतना प्रभाव शायद नहीं पड़ पाएगा, ये इतना सा बात तो जरूर कहूंगा।
मतलब कहने का मुकेश जी, हमारा तात्पर्य यही है कि अब हद हो गई है, रोज कानून बदलने, मतलब इतनी ढीठ और बेशरम सरकार हो गई है कि अब डरी नहीं रही किसी भी चीज से। रोज कानून बदल रहे हैं, रोज महंगाई बढ़ रही है, अब ई श्रम पोर्टल कानून ले आए हैं, आपको मालूम है?
हाँ इसकी तो मैंने, ये तो श्रम पोर्टल का तो मेरे को इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन आने वाले
वैसे
टाइम में
इसमें
हम
थोड़ा सा हम
देख
आपका
के।
आपको अवगत करा दें कि इसमें केंद्र सरकार ने लागू किया है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप राज्य सरकार का भी है। राज्य सरकार को भी अनुमति इतनी है और इतना ताकत है कि वो इसको थोड़ा बदलाव कर सकती है। तो केरल में सुना है कई जगह तो इसको बिल्कुल लागू ही नहीं होने दिया इसको, और क्या नाम, राजस्थान में भी थोड़ा बहुत विद्रोह चल रहा है इसके विषय में, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। हरियाणा में 16 तारीख शनिवार से लागू कर दिया गया है, हरियाणा में कोई इसकी हलचल हमने सुनी नहीं अभी तक कि कोई इसका विरोध कर रहा है।
विरोध तो मनोहरलाल जी हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में भी, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये विरोध करने की तो गुंजाइश ही नहीं बचती हरियाणा में तो।
लेकिन यहाँ पूरे
हरियाणा
हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार तो नहीं है।
नहीं, बहुमत की नहीं है, लेकिन जेजेपी तो शामिल है ना सरकार में।
जी,
जेजेपी को हम जेजेपी से ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना, ई पोर्टल या श्रम कानूनों में जो बदलाव किया उसका विरोध करेगी जेजेपी, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं सरकार में रहते
चलिए
हुए।
मुकेश जी, आपने हमको फिर भी बहुत अच्छी बातें बताई आज के वक्त दौर की, आज क्या हुआ, किसानों ने क्या किया, और आपने थोड़े श्रम कानून पे भी बातचीत करी, और हम आशा करते हैं कि कल हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, थोड़ी इसकी जानकारी रखें, क्योंकि हम जब आपसे ही सवाल नहीं करेंगे ट्रेड यूनियन से श्रम कानून के विषय में, तो किससे सवाल करेंगे।
जी 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 जी
तो
शुक्रिया
थोड़ा सा
जनरल
कल
जी,
इस पे ध्यान रखिए, हम कल आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हमारे साझा मंच पे आकर आपने हमारे श्रोताओं को ज्ञान दिया। तो
थैंक यू थैंक
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ट्रेड यूनियन से मुकेश जी को,
यू। कहाँ घर पर
धन्यवाद।